धारा है थारा जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा।
सुंदर गीत सुना हमने, मुरली है जीवन की अमृत धारा धारा जो देती है दुखों से किनारा। और आज का हमारा सम्मान भी क्या है, मैं मास्टर मुरलीधर आत्मा हूँ। क्यों मैं मास्टर मुरलीधर आत्मा हूँ? क्योंकि मेरा कनेक्शन मुरलीधर से है। मुरलीधर की रोज हम मुरली सुनते हैं, तो वो मुरली जो हम रोज सुनते हैं या ये जो क्लासेस हम रोज सुन रहे हैं, इसका स्रोत मुरली ही है। तो क्यों नहीं हम मुरली का गहरा अध्ययन करें? जितने भी स्पीकर्स आए, जितनी भी स्पीचेस दी, मुरली का हवाला देते हुए ही कहा ना सबने। जब मुरली का हवाला देते हुए बातें समझाई जा रही है, तो सोचो मुरली का कितना इम्पोर्टेंस होना चाहिए। क्यों नहीं हम स्वयं भी उस मुरली को इतनी गहराई से पढ़े, सुने, समझें और उसको अपने जीवन में उतारे। तो आज उसी लक्ष्य से हमने ये सुंदर विषय रखा आज, मुरली रिवीजन का। और इस मुरली रिवीजन के लिए हमने आमंत्रित किया है हमारे आदरणीय राजयोगी भ्राता सुशील भाई जी को। एक हाथ हिलाकर हम आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। 1995 में जब परमात्मा ज्ञान सरोवर की धरनी में आकर ज्ञान सरोवर का उद्घाटन कर रहे थे, उसी वर्ष पंजाब जोन के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश की धरनी में आपको ईश्वरीय ज्ञान मिला। उसके बाद आप 1999 में जब मधुबन आए, वहां से आपने अपने समर्पित जीवन की यात्रा आरंभ की। मधुबन में रहते आपकी मुख्य जो सेवाएं हैं वह है मीडिया, सोशल विंग, पब्लिक रिलेशन, ये सेवाएं आप संभालते हैं। और जैसे बाबा कहते हैं कि पुरुषार्थी ग्रुप बना हुआ होना चाहिए, जहां आपस में बैठकर पुरुषार्थ को तीव्र बनाने के लिए कुछ मनन चिंतन हो, तो ऐसे ही पुरुषार्थी ग्रुप के एक सदस्य हैं आप। और जहां पर ये लोग आपस में बैठ के बहुत अच्छी मुरली की मनन चिंतन करते हैं, और इसलिए हमने आज मुरली रिवीजन के लिए आपको, आप सबके सम्मुख बुलाया है। तो कैसे हमारे भ्राता जी पुरुषार्थी ग्रुप में बैठकर मुरली रिवीजन करते हैं, थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालेंगे, ताकि आप भी मुरली के प्रति उतनी ही रुचि लेकर उसमें उतनी रिवीजन करें। ऐसा नहीं बस सिर्फ सुन लिया, सुबह लिख लिए 2-3 पॉइंट डायरी में, फिर तो डायरी भी पता नहीं कहाँ रख दी, मालूम नहीं है ना। लेकिन सारा दिन मुरली के पॉइंट अंदर में चिंतन, यही तो परफेक्ट स्पीच के अंदर आएगा, और क्या आएगा, है ना। तो सुनते हैं भ्राता जी से मुरली रिवीजन कैसे करें। आदरणीय भ्राता जी।
ओम शांति। सबने गीत सुना, मुरली हमारे जीवन की अमृत धारा है। जीवन में अगर हम खूब सेवाएं करते रहें, खूब योग लगाएं, धारणाएं भी ठीक हों, लेकिन अगर मुरली पर अटेंशन नहीं हो तो वो सब फीका रहता है, और अधिकतर होता भी ऐसे ही है। सेवाओं की भागदौड़ हम खूब करते हैं, सेवाओं में सफलता प्राप्त करने के लिए भी अनेक प्रकार के तरीके अपनाते हैं, सफलता भी अर्जित कर लेते हैं, संख्या में भी वृद्धि हो जाती है, सेंटर भी हरे भरे हो जाते हैं, योग भी खूब लगाते हैं, धारणाओं पर भी अटेंशन रहता है, लेकिन सब में जो ताकत आनी चाहिए उसका मुख्य आधार क्या चीज है? मुरली है। तो हमारा मुरली से कैसे प्रेम बढ़े? क्योंकि मुरली के जो रत्न हैं बहुत, एक कहेंगे कि अमृत तुल्य हैं, और हमारी बुद्धि में बहुत अनेक जन्मों से बहुत प्रकार के विष भरे हुए हैं, उस अमृत को ग्रहण करने के लिए बहुत धैर्यता चाहिए, गंभीरता चाहिए, समझदारी चाहिए, पेशेंस चाहिए। ऐसा नहीं हम समझ सकते या ऐसा नहीं मान सकते कि जल्दी मुरली हमको सारा ग्रहण हो जाती है। बड़े लंबे समय के बाद धीरे धीरे मुरली याद रहने लगेगी, पहले तो रहती नहीं है। लंबे समय तक मुरलियां सुनते रहते हैं, अगर थोड़ी बहुत याद रह भी जाए लेकिन वो समाती नहीं है। उसका जो हमको गहराई से कुछ अनुभूति होनी चाहिए, एक अंदर में आत्मिक संतोष होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं खालीपन रहता है। तो मुरली की गहराई में कैसे जाएं, उसके लिए क्या करना है, उस पर हम चिंतन करेंगे। आज की मुरली में बाबा ने कहा है कि मधुबन में किस लिए आते हैं? हाँ जी, सन्मुख मिलने पढ़ने के लिए और हाँ जी रिफ्रेश होने के लिए। हाँ सब बातें ठीक है। तो मधुबन में आते हैं हम रिफ्रेश होने के लिए। तो ये जो भट्ठी का समय चल रहा है बहुत बहुत कीमती है। ये हम इसको सामान्य रूप से ना नष्ट कर दें, क्योंकि ये हमारे परमानेंट संस्कार बन जाने का समय है। इस समय जो मधुबन के धरनी पर हम संस्कार डाल देंगे वही संस्कार हमारे फिर निरंतर हो जाएंगे। लेकिन थोड़ी उसमें दृढ़ता भी चाहिए, अटेंशन भी चाहिए। हर आत्मा अपने आप को रिफ्रेश करना चाहती है। संसार में तो रिफ्रेश करने के बहुत साधन होते हैं, घूमना फिरना, पिकनिक मनाना। हम ब्राह्मण भी करते हैं, घूमना फिरना पिकनिक सब होता है, लेकिन हमारी है ज्ञान युक्त। ऐसा नहीं है कि हम संसार की तरह सन्यासी हैं, बल्कि हमारा तो जीवन और ही एक रसदार हो गया है। संसार में जो साधनों से सुख लेते हैं वो है अल्पकाल का, वो वहीं का वहीं नष्ट हो जाता है। लेकिन हम ज्ञान के साथ साधनों का सुख लेते हैं, समझ के साथ, और वो सुख का अनुभव नहीं बल्कि अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते हैं। हम सब की है गॉडली स्टूडेंट लाइफ। तो सबसे पहले तो हम अगर इस ब्राह्मण लाइफ का अगर अतीन्द्रिय सुख अनुभव करना है इसमें, तो सबसे पहले हम समझ के चलें कि हम हमेशा गॉडली स्टूडेंट लाइफ जी रहे हैं। क्योंकि स्टूडेंट का हमेशा जीवन में उमंग उत्साह बना रहता है, अगर कोई पढ़ने लिखने वाला हो तो। नहीं तो स्टूडेंट थोड़ा दूसरे भी होते हैं, जो बाद में मिनिस्टरों को भी चला लेते हैं, मिनिस्टर बन के दूसरों को भी चला लेते हैं। लेकिन हम गॉडली स्टूडेंट लाइफ है तो हमारी डिसिप्लिन लाइफ है। लेकिन पढ़ाई में आते आते फिर माया भी बाबा कहते बहुत अपोजिशन करती है, और माया कहीं बाहर से नहीं आती है, माया हमारे भीतर ही है। हमारा मुकाबला किसी दूसरे से नहीं होता है, हमारा मुकाबला स्वयं से ही है। अर्थात जो हम कल थे और आज हैं, तो जो कल का व्यक्तित्व था और आज का जो व्यक्तित्व है, दोनों का मुकाबला चलता है। जो हम महावाक्यों को अमल करते हैं थोड़ा परिवर्तन होता है, तो कल से हम अपने आप को थोड़ा बेहतर महसूस करते हैं। अगर उन पर अमल नहीं करते हैं तो जैसे हम कल वाले व्यक्तित्व से हार जाते हैं, खुद से ही हार जाते हैं। दुश्मन हमारे बाहर नहीं है, दुश्मन हमारा कोई दूसरा नहीं है, हमारे भीतर ही कमजोर संकल्पों की जो रचना है या स्वयं के प्रति जो हीन भावनाएं हैं। कौन सी हीन भावनाएं रहती है कि मुझे मुरली याद नहीं होती है, यही सबसे पहले हम संकल्प डाल देते हैं मुरली मन अपने मन के अंदर कि मुझे मुरली याद नहीं रहती है। तो फिर अंदर मन भी सबकॉन्शियस माइंड भी वैसे काम करना आरंभ कर देता है। तो हमको किसी भी हालत में किसी भी सूरत में अपने मन में कमजोर संकल्पों की रचना नहीं करनी है, सोचना नहीं है। वो हमेशा हमको सोचना है कि हमको ही मुरली याद नहीं रहेगी तो किसको रहेगी, क्योंकि हमारे सिर पर किसका प्रधानी हाथ है? स्वयं भगवान का है, भाग्य विधाता का है। अब भगवान का हाथ हमारी बुद्धि के ऊपर हो और उस बुद्धि में ज्ञान ना ठहरे, ये हो ही नहीं सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं हम भगवान के हाथ को किनारे कर देते हैं, इसलिए माया अपना हाथ रख देती है, माया अपोजिशन करने आरंभ कर देती है। इसलिए बाबा कहते हैं घड़ी घड़ी माया भुला देती है, आज की मुरली में था। इसलिए बाबा ने कहा ना, बाप है मीठी सैकरीन, इसलिए तुम एक बाप को याद करने के लिए बाकी सब बातें छोड़ मीठी सैकरीन बन जाओ। तो कौन कौन सी बातें छोड़नी पड़ेंगी, कौन कौन सी बातें छोड़नी? घर बार तो छोड़ना नहीं है। बाबा ने कहा ऐसा नहीं है कि बाप के बन गए तो पुरुषार्थ सहज हो, याद सहज हो जाएगी, याद जम जाएगी, ऐसा नहीं है। पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। अब डॉक्टर के पास भी है, डॉक्टर तो मिल गया हमको, उसको हमें पता है इसके पास ट्रीटमेंट होगा, लेकिन केवल इतना जानने तक हमारा ट्रीटमेंट नहीं होगा। जो वो कहेगा उस अनुसार हमको परहेज करना पड़ेगा, उसके दिशा निर्देश अनुसार हमको मेडिसिन लेनी पड़ेगी, उसी के अनुसार अपनी दिनचर्या बनानी पड़ेगी। तो उसी तरह से बाबा भी सुप्रीम सर्जन है। हम आत्माओं की हालत बहुत नाजुक हो गई, इसलिए वो आकर हमारा उपचार कर रहा है, शफा दे रहा है, ज्ञान अमृत पिला रहा है। इसलिए बाबा ने कहा बुद्धि किससे भरनी है? ज्ञान रत्नों से बुद्धि रूपी झोली भरी रहे। तो झोली में रत्न कहां से आएंगे? मुरली से आएंगे। हम जितने भी क्लासेस सुनते हैं, जो भी क्लास कराने वाले भाई बहने हैं, वो कैसे इतना पारंगत हो गए? मुरली के आधार पर। तो मुरली को हमको थोड़ी प्राथमिकता देनी है और मुरली को हमें अलग अलग ढंग से पढ़ने के तरीके सीखने हैं। केवल एक ही ढर्रे पर अगर हम चलते रहेंगे तो मन उबने लगता है, एक ही चीज बार बार खाते रहेंगे तो मन को अच्छा नहीं लगता वो, इसलिए उसमें मिनहीनता चाहिए। जैसे मुरली के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, मुरली में पात्र कौन कौन से होते हैं, जैसे आज की मुरली में कौन कौन था पात्र? जैसे एक नाटक होता है, नाटक में अनेक पात्र होते हैं, कोई हीरो होता है, कोई विलेन होता है, कोई कॉमेडियन होता है, तो ऐसे आज की मुरली में कौन कौन है पात्र अगर इसी पर चर्चा की कर ली जाए तो? एक तो शिव बाबा हो गए, सुनाने वाला पात्र हो गया, और कौन कौन है? लक्ष्मी नारायण पात्र और सीता, आज की मुरली में सीता भी एक पात्र है, रावण भी है पात्र। तो इन सब का आपस में क्या चल रहा है? युद्ध चल रहा है। और कौन है पात्र? सेना भी है बीच, हैं जी, माया भी है, हैं जी, वजीर भी है, हाँ फ्यूचर में उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, हाँ, और सेना है, पायलट है, सीताएं हैं, हाँ जी, बालक सो मालक, हाँ बालक भी है, मालक भी है, और भी है, बहुत पात्र है, हाँ जी, और हम ब्राह्मण बच्चे, और मुरली के लास्ट में है एक पात्र अर्जुन और सुहागिन। सुहागिन तो ऐसे अनेक पात्र हैं। अगर हम मुरली से केवल इतना याद कर ले कि आज की मुरली में कौन कौन से पात्र हैं, तो हमारा लिंक जुड़ता जाएगा। जैसे सीता है, तो सीता के बारे में क्या क्या कहा बाबा ने, सब धीरे धीरे याद आना चालू हो जाएगा। कंट्रास्ट क्या है, वो सीता क्यों चली गई रावण की वाटिका में, शोक वाटिका में, हम कौन सी सीताएं हैं, हम कौन से शोक वाटिका में हैं, कैसे हमको भगवान छुड़ा, राम भगवान छुड़ाने के लिए आया हुआ है, हम सीताओं के अंदर क्या क्या कहां हमने कौन सी मर्यादाओं का उल्लंघन कर दिया जो हम शोक वाटिका में पहुंच गए, कौन कौन से विकार हमारे में समा गए। तो ऐसे पात्र के माध्यम से भी मुरली को याद रखना बहुत सहज हो जा सकता है। और दूसरी बात, मुरली में कोई इंग्लिश वर्ड आते हैं, खाली इंग्लिश वर्ड ही याद कर लीजिए तो भी याद रहता है। इस भारत में गॉड गॉडेस का राज्य था, आज की मुरली में था। सैक्रीन ये इंग्लिश शब्द है, रिगार्ड रिस्पेक्ट रिगार्ड वरदान में था, और डिग्री एक थी इम्प्योरिटी की डिग्री, प्योरिटी की डिग्री दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है, तो ये प्योरिटी और डिग्री दोनों इंग्लिश शब्द हैं। एस हैं जी अपोजिशन, माया अपोजिशन करती है। तो ऐसे अनेक अगर इंग्लिश शब्द अलग अलग कर दो तो भी मुरली याद रहेगी। हैं जी एक्टर, हाँ तुम एक्टर्स हो, हीरो पार्टधारी हो, लिबरेटर, लिबरेटर भी था, दुख करता सुख करता के साथ लिबरेटर, एक बाप ही लिबरेटर है जो तुमको सब दुखों से लिबरेट कर सकता है, संसार में कोई ऐसा है नहीं। और इंग्लिश का शब्द देखो मुरली तो ऐसे याद होगी, पायलट, हाँ पायलट इंग्लिश, वॉइसलेस वर्ल्ड, इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड, कॉर्पोरियल वर्ल्ड, ये सब इंग्लिश, तो कितने इंग्लिश वाले शब्द याद आ गए। अब जब ये इतने याद रहेंगे तो खुशी का पारा अपने आप चढ़ जाएगा, चढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो खाली इतने इंग्लिश के शब्द वो भी अल्फाबेटिकली याद कर लो अलग से, तो मुरली धीरे धीरे याद होना शुरू हो जाएगी और हमारे चिंतन की धारा धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। चिंतन वास्तव में बहुत सहज है, जैसे बाबा ने बोला ना, है तो बहुत सहज है, बाप को याद करना सहज है, लेकिन माया अपोजिशन क्यों करती है, क्योंकि बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। तो मुरली को एक तो पात्र के माध्यम से याद कर सकते हैं, इंग्लिश वर्ल्ड के माध्यम से याद कर सकते हैं, और किसके माध्यम से, ऐसे भी सभी अपनी बुद्धि चलाओ। हाँ जी शिक्षाओं के माध्यम से, हाँ डू एंड डोंट्स, क्या करना है और क्या नहीं करना है। जैसे आज की मुरली में तुम्हें पुरुषार्थ तो करना है, बाप के बन गए ऐसा नहीं, बाप को बाप के बन गए तो कुछ चलेगा, पुरुषार्थ तो करना है। तो ये है डू, पुरुषार्थ करना है, गर्भगृह में रहना है, घर वाले को छोड़ना नहीं है, और डोंट्स अर्थात और सब बातें छोड़नी है जो मुरली के स्टार्टिंग में था, मीठे बच्चे, एक बाप को याद करना है। तो कौन कौन सी बातें छोड़नी है उसकी हम एक लिस्ट बना सकते हैं। सारे दिन में हम अपने टाइम टेबल, अपना टाइम मैनेजमेंट को देखें कि कहां कहां हमारा पहले टाइम वेस्ट जा रहा है, एक उसकी लिस्ट हो सकती है। अमृत वेले से लेकर रात्रि तक जो भी हमारे 12-15 घंटे होते हैं उसमें हमारा टाइम भी वेस्ट कहां जा रहा है, एक उसकी लिस्ट बना दी जा सकती है। तो हमको वो नहीं करना है, उसमें डोंट्स आ जाएगा। फिर डू क्या करना है, बाप को याद करना है, बाप का पैगाम देना है, काल के मूल्य में था तुम्हें सारी दुनिया को सुख शांति का पैगाम देना है, चैन बेचैन, सारी दुनिया बेचैन हुई पड़ी है। तो ऐसे डू एंड डोंट्स ये भी कर सकते हैं, तुमको पवित्र रहना है, ज्ञान अमृत पीते रहना है, बुद्धि रूपी झोली ज्ञान रत्नों से भरनी है, कोई प्रश्न नहीं उठाना है। तो ऐसे डू एंड डोंट्स ये भी एक तरीका हो सकता है, क्या करना है और क्या नहीं करना है मुरली को याद करने का, बहुत आसान तरीका है। और कंपैरिजन, बिल्कुल मुरली में कंपैरिजन, जैसे श्री कृष्ण के बारे में बाबा क्या कहते हैं, शिव बाबा शिव भगवान वाच क्या है, दूसरा सत्ययुग के बारे में, कलयुग के बारे में, ऐसे अनेक प्रकार के कंट्रास्ट वाली बातें होती हैं। हमारी मनुष्य मत क्या है, ईश्वरीय मत क्या है, तो ऐसे कंट्रास्ट के माध्यम से मुरली को याद किया जा सकता है। और टॉपिक, छोटे छोटे टॉपिक निकालें, है ना, जैसे माया का अपोजिशन, इस पर हम खुद ही अपनी एक क्लास निकाली जा सकती है, क्योंकि अपनी बुद्धि को चलाना है। अभी अभी समय बहुत पहले वाला इतना नहीं रहा कि अभी बहुत लंबा समय पड़ा है, और ऐसा समय भी नहीं है कि हमको कोई पूछेगा अभी आगे, वो पहले वाले समय निकल गए। अभी हम ये अपेक्षा नहीं रखें कि हमारे ऊपर कोई कृपा करेगा आपको, अभी अपने ऊपर खुद ही कृपा करनी है। भगवान ने सारा ज्ञान स्पष्ट रूप से दे दिया हुआ है और पूरे संसार में घूम रहा है, व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से ज्ञान की बाढ़ आई पड़ी है, लेकिन हमें अपना ज्ञान, उस ज्ञान को अपना बनाना है, तो खुद चिंतन करना उसके ऊपर, क्योंकि उड़ान हमको खुद भरनी है। अंत में हमें अपनी उड़ान के लिए कोई दूसरे का सहारा ले ये होगा नहीं, खुद ही उड़ान भरनी पड़ेगी, खुद ही समर्थ बनना पड़ेगा, खुद ही उमंग उत्साह के पंख हमेशा लगे रहने चाहिए। तो एक ये विषय हो गया, टॉपिक के माध्यम से हम छोटे छोटे टॉपिक कर लें, माया घड़ी घड़ी क्यों बुला देती है, माया का ओपोजिशन है जी, संशय में आ जाते हैं, संशय आने के कारण क्या है, क्योंकि पढ़ाई रेगुलर नहीं है, क्योंकि कौन से समय कौन सा महावाक्य हमारे सन्मुख आएगा जिससे हमारी प्रगति हो जाएगी, हम हो सकता है उसको नहीं आने से मिस कर दें। इसलिए बाबा ने कहा मुरली कभी मिस नहीं करनी है। 17/2/2011 की मुरली है। जो बच्चे मुरली मिस करते हैं वो बाप के दिल तक से वंचित रह जाते हैं। एक साकार मुरली है कुछ महीने पहले की। मुरली का तो इतना महत्व होना चाहिए, अगर आपको 6 माइल भी पैदल चल के आना पड़े तो मुरली जरूर आके सुनो। और इसके सामने, इसके लिए हमारे सामने जगदीश भाई उदाहरण थे। सबने जगदीश भाई की जीवनी पढ़ी होगी, जगदीश भाई को देखा। किस किसने देखा जगदीश भाई जी को? बहुत थोड़े भाई बने। 2001 में उन्होंने शरीर छोड़ा, तो उनकी वाणी में क्या दम था, क्या जौहर था। तो जब वो ज्ञान में चले तो कितना, 21 किलोमीटर पैदल आते थे वो, 21 किलोमीटर। इसलिए अपने पुरुषार्थ में अगर अपने खून को गर्म रखना है तो पुराणों की हिस्ट्री जरूर पढ़िए। इस मुकाम पर यज्ञ पहुंचा ऐसे नहीं पहुंच गया ये, जिस त्याग तपस्या जो उन्होंने की है, जिनके बल पर, जो दादियों ने, बड़ी दादियों ने, दादी जानकी जी ने, दादी प्रकाशमणि जी ने, चंद्रमणि दादी जी ने, अनेक दादियां जितने भी पूर्वज हुए हैं सभी ने इतने त्याग तपस्या की है, जिनके बलबूते पर आज यज्ञ इस मुकाम पर पहुंचा है और आज हम उसका यहां उसका फायदा ले रहे हैं। बहुत त्याग तपस्या की है। कई दफा हम दादी जानकी से सुनते थे, सेंटों में कुछ होता नहीं था खाने के लिए, और हमने खुद देखा भी हुआ है। अभी कुछ साल पहले भी माना, कुछ साल पहले माना 20-25 साल पहले की बात ही है, बहनें दूर दूर तक पैदल जाती थी 10-12 किलोमीटर एक एक व्यक्ति को कोर्स देने के लिए। हम अपनी लाइफ की सुनाए, हमारे से पहले हमारा बड़ा भाई ज्ञान में चला, तो वो बहुत थोड़ा भक्ति भावना वाले थे। हम तो इतनी भक्ति भक्ति नहीं करते थे क्योंकि हमको भक्ति इतनी अच्छी लगती नहीं थी, क्योंकि इतना ये भेदभाव हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और ये सब के अपने अपने रीति रिवाज, ये हमको अच्छे लगते ही नहीं थे। हमको तो ये लगता है कि सारे ही अच्छे हैं, हो तो माना सब एक ही हूं, ये अलग अलग क्यों है। तो जो बड़ा भाई थोड़ा भक्ति भावना वाला था, बिजनेस पहले तो अकाउंट के काम करते थे, लेकिन उन्होंने फिर अपना बिजनेस कर लिया, फिर भक्ति पाठ को जो बहुत कर दी, एक कपड़े का शोरूम खोला, तो भक्ति बहुत ही ज्यादा उनके अंदर जागरूक हो गई। तो पहले तो जेंटलमैन थे, फिर इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी रख ली, एकदम वो टीका वीका लगा के पूरा साधु बन गया एकदम, जो महामंडलेश्वर टाइप, और बड़ी बड़ी आंखें होंगी, वो मालाएं वाले पहन के सारी हाथों में इधर उधर। तो घर वाले भी बहुत नाराज उससे, और हमको भी उसको देख के बैरागी आता था, ये ठीक नहीं है रास्ता, हम भी उससे कन्नी कतराते थे। लेकिन एक हमारे मन में ये रहता था, देखो भगवान को याद करने के लिए, प्राप्त करने के लिए कितनी साधना कर रहे हैं, और हम इतने नलायक हैं भगवान को याद करने, थोड़ी भक्ति ही नहीं करते। हाँ थोड़ा बहुत हम मंदिर में जाते थे लेकिन इतना नहीं। तो भाई जो है उन्होंने इतना भक्ति पाठ पूजा किया, इतनी साधना की, सारे शास्त्र वास्त्र पढ़ लिए, और पूरी पूरी रात वो शमशान में जाकर अकेला साधना करता था भगवान को प्राप्त करने के लिए, और मॉर्निंग में घर लौटता था, मुर्दे की राख से स्नान करके घर आता था भगवान प्राप्ति के लिए। तो इतना वो घर वाले उससे तंग हो गए, और बिजनेस तो लगभग डूब ही गया उसका, क्योंकि उस तरफ ध्यान ही नहीं रहा, सारा फोकस उसका भक्ति मार्ग पर, सभी देव देवताओं की चित्र फोटो इधर उधर लगा के, सब शास्त्र पढ़ लिए, बड़े बड़े साधु संतों को बुलाना, तो ये उसका चलता रहा। तो माता पिताजी बहुत नाराज, और पिताजी हमारे बहुत खूंखार टाइप के थे, माना गुस्से वाले, तो वो तो पिटाई कर देते थे, साधु होगा तुम अपने घर होगा, सबके सामने पिटाई करते थे। पिताजी तो ऐसे थे कि वो घर वाले के सामने भी उसकी पिटाई करते थे तो ये चलता रहता था। तो फिर उनको लास्ट डे वो घरवार छोड़ के जाने में इतना बैराग आ गया था, तो जिस दिन घरवार छोड़ के जा रहे थे, तो वहां एक मंदिर है ज्वाला जी हिमाचल प्रदेश में, तो वहां एक मंदिर है, मंदिर में घरवाली ने बोला चलो अभी आप जा ही रहे हैं तो भले जाओ, लेकिन मंदिर में थोड़ा परिक्रमा करके जाओ। तो वहां परिक्रमा क्या करनी थी, वहां बाबा की बहनें बैठी थी, प्रदर्शनी लगी हुई थी तो देखो कैसे आता है, जब भक्ति पूरी होगी प्रदर्शनी लगी, लेकिन भाई को अहम बहुत था क्योंकि शास्त्र सारे पढ़ा हुआ था। तो खैर प्रदर्शनी देखी, इन्होंने बहुत प्रश्नोत्तर भी किए, लेकिन उन्होंने भक्ति में बहुत सारे साक्षात्कार कर लिए थे। मम्मा का साक्षात्कार कर लिया था, शिव बाबा का परम धाम से कैसे ज्योति आ रही है, जैसे भक्ति में कहा जाता है हजारों सूर्य से तेजोमय है, तो वो उसको सारी अनुभूति थी। तो वो रात को उठ के एकदम चिल्लाता था बस करो बस करो बस करो, तो लोग आके उसको पकड़ते थे क्या हो रहा क्या हो रहा, और वो आत्मा कैसे शरीर से डिटैच होती है उसने सारी अनुभूतियां की हुई थी। तो वो जा रहा था वहां जाके, फिर बहनों ने प्रदर्शनी थोड़ी समझाई, तो वहां से फिर उन्होंने साप्ताहिक पाठ्यक्रम वाली किताब ली, फिर वापस घर आ गए। वहां से घर से लेकर लगभग 30 किलोमीटर दूर वापस आए तो किताब झोपड़ी सेवन डेज वाली, तो सारा उनको ज्ञान बुद्धि में बैठ गया, उनको सब साक्षात्कार पहले से हो चुका था। फिर अगले दिन वो उसी जगह गया जहां प्रदर्शनी लगी थी, तो वहां बहने जा चुकी थी प्रदर्शनी, तो बहने तो प्रदर्शनी लगाने आई थी एक दिन के लिए। तो फिर वो वहां बैठ के बहुत रोया कि बड़ी मुश्किल से मिला और इधर है भी अभी कोई नहीं। तो फिर वापस लौट आया, फिर वहां एक बाजार में साथ में एक दुकानदार था, तो उसने कहा कि यहां से कोई 80-90 किलोमीटर दूर एक सेंटर है ब्रह्मा कुमारी का, मैं जानता हूं, तो वहां का एड्रेस दिया। तो भाई ने क्या जितने भी पत्थर वगैरह थे सारे वो शिवलिंग रखे हुए, क्योंकि समझ आ गया एकदम तुरंत एक ही रात में सारे, उसने किताब पढ़ ली और सारा ज्ञान समझ में आ गया उसको, तो सारे बोरी में पत्थर पत्थर भरे और फोटो वोटो भर के वो सारा सेंटर में ले गया उधर कि बहन जी अब ये रखो आप। फिर वहां से पूछा कि ये सेंटर तो बहुत दूर है तो मुझे क्या दूर आना पड़ेगा। फिर वहां से बहन जी ने दूसरे सेंटर का एड्रेस दिया लगभग 40 किलोमीटर दूर था। तो फिर भाई ने वहां कॉन्टेक्ट किया, फिर वहां से बहने डेली उस भाई को कोर्स कराने के लिए आती थी 40 किलोमीटर दूर, और कोई किराया नहीं लेना, 40 किलोमीटर दूर जाना आना बहनों को, और भाई से कुछ नहीं आ। तो एक एक आत्मा को निकालने के लिए बाबा ने बहनों को निमित्त बनाया, ऐसे आत्मा साधारण नहीं है। तो भगवान का ज्ञान इतना अनमोल है, कहीं भी किसी समय किसी के माध्यम से टच हो सकता है, इसलिए किसी भी सूरत में हमको टाइम को मिस नहीं करना है। पता नहीं कब आत्मा को पंख उड़ान लग जाए, अगर वो भाई वहां नहीं जाता बहने नहीं होती तो क्या होता है। तो इसी तरह से अगर हम सेंटर में नहीं आते हैं, बहनों की दृष्टि ना पड़े, इतने परिवार का संगठन का बल होता है, प्योर वाइब्रेशन का किला होता है, उस किले में आने से आत्मा को अपने आप ही उड़ान भरना आरंभ कर देती है। हो सकता है इस भट्ठी में रहकर हमारे कई जन्मों के पाप ऐसे भस्म हो जाए जो हमको पता भी न चले, इसलिए हमको किसी भी सूरत में भगवान के महावाक्यों को नजरअंदाज नहीं करना है। हाँ ऐसा है कि बैठेंगे धीरे धीरे, इसके लिए बहुत धैर्यता चाहिए, बहुत पेशेंस चाहिए, इसलिए भगवान धैर्य का सागर है। दादी जानकी जी सुनाते हैं लंदन की बात के पड़ोसी को एक बार कोर्स कराया होगा, ज्ञान सुनने आता नहीं था लेकिन उसको कभी भोग देना बंद नहीं किया। आखिर वो 26 साल के बाद नियमित स्टूडेंट बना, वो 26 साल के बाद, तो कितना पेशेंस रखा, कितना धैर्य था। बड़े दादी जी को देखते थे हम, दादी प्रकाशमणि जी को मुरली सुनाते समय, अब ये तो इस तरह के सोफे हैं, पहले यहाँ इस तरह के सोफे नहीं थे ना इस तरह की संदलियां थी, बिना टेके की संदली थी और यहाँ बड़ी संदली होती थी, तो और ओम शांति वन में भी बड़ी संदली, ये सोफे कुर्सियां वगैरह तो सब बाद में आए। तो बड़ी संदली के ऊपर दादी एकदम टांग के ऊपर टांग बैठ के मुरली पढ़ते थे बड़े दादी, और हम सब वहां नीचे बैठते थे। अभी तो सोफे थोड़ा आगे 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 हैं, वहां पहले नीचे पट में बहुत जगह होती थी, और दादी हमको खुद कहती थी टांग पर टांग रख के बैठो। माना स्टूडेंट लाइफ क्या होती है उसके प्रति हमेशा जागरूक रह सकते थे वो, तो वो टाइम बीत गया, अभी अभी अपने आप को शक्तिशाली बनाना है। इसलिए बड़ों के इतिहास की जानकारी होना बड़ी जरूरी है, पूर्वजों की तस्वीर ऐसी थोड़ी नहीं है। एक देखो सामने जगदीश भाई जी हैं, कुंज दादी जी हैं, भोली दादी जी हैं, शांतामणि दादी, जानकी दादी, चंद्रमणि दादी, ये सब एक एक अनन्य रतन, मनोहर दादी, यहां पूरी की पूरी दादियां बैठती थी और जगदीश भाई आते थे बीच में, तो सबका आपस में रूहान चलती थी, पूरी यज्ञ की इतिहास सुनाते थे, तो सबकी आंखों में आंसू आ जाते थे कि हमने तो कुछ किया ही नहीं सचमुच, जहां हम बैठे हैं किसकी बदौलत है ये, त्याग से तो उनका था, हमारा तो कुछ किया ही नहीं सचमुच। अभी जब ये आत्मा ज्ञान में आई, उनको तो इतना ज्ञान भी क्लियर नहीं था, बाबा जैसे कहते हैं अंगुष्ठ मित्र है, ना कोई लिटरेचर था, ना कोई चित्र प्रदर्शनियां थी, ना और संसार में विरोध कितना उनका, छोटे छोटे बच्चे और वो भी साहूकार घरों से थे, ऐसे नहीं कि सामान्य वर्ग के थे, लेकिन फिर भी उस समय कितनी पैकेटिंग का सामना किया इन्होंने, कोर्ट कचहरियों का चक्कर खाए, तो आज उनके बलबूते पर उनकी त्याग उनकी तपस्या से हमको कुछ सबक लेना चाहिए। इसलिए हमारा जीवन ऐसे नहीं कि बैठे बैठा हमारा साधना वाला जीवन है, बैठा बैठा योगी जीवन है, नेचुरल निरंतर योगी जीवन है। जैसे श्वास निरंतर है ऐसे हमारे जीवन में निरंतर योगी जीवन है। तो मुरली के प्रति पूरी जागरूकता चाहिए, सजगता चाहिए, सावचेत चाहिए। मुरली योग से कम नहीं है। जब तक मुरली के पॉइंट हमारी बुद्धि में नहीं तो योग में मन स्थिर होगा भी नहीं, क्योंकि पेट्रोल तो हमने डाला ही नहीं है। और मुरली माना प्योर पेट्रोल, एकदम शुद्ध पेट्रोल, उसमें कोई मिलावट नहीं है। जैसे एरोप्लेन कैसे उड़ता है, डबल रिफाइन पेट्रोल होता है, अगर थोड़ा सा किजरा है जो तो क्या होगा, क्रैश हो जाएगा। उसी तरह मुरली का अगर प्योर पेट्रोल हमारी बुद्धि में पड़ जाए तो आत्मा एक सेकंड में उड़ जाएगी। अगर ज्ञान मिक्स करके आ रहा है, समझ रहे हैं, क्लासेस हम सबकी सुन रहे हैं, सुननी चाहिए, हमको रास्ता मिलता है, चिंतन करने के लिए रास्ता बता रहे हैं वो सब बड़े, लेकिन हमको ग्रहण करना, उस चिंतन को अपना चिंतन बनाना है। इसलिए एक मेथड भी है मुरली का, मनन चिंतन करना। सबसे पहले मुरली को पढ़ना, एक दृष्टि घुमानी, फिर दूसरा है रुक रुक के पढ़ना है, फिर तीसरा कुछ अंडरलाइन करने हैं, फिर चौथा कुछ पॉइंट सिलेक्ट करने हैं, फिर पांचवा उसको अलग से लिख लेना है, फिर छठी बात है उसको बार बार रिकॉल करना है, बार बार जब भी मौका मिले। अगर हम दूसरी बातों को सोचते रहते हैं तो इन बातों को क्यों नहीं, मुरली की बातों को क्यों नहीं सोच सकते हैं? जबकि हमको पता कल्याण, हमको कल्याण हमारा इन्हीं बातों से होने वाला है, फिर भी हम अपने आप को ठग लेते हैं। आज की मुरली में था ना, या कल के, ठगना नहीं अपने आप को। कल की मुरली में था अपने आप को ठगना नहीं है। आज का था, कल का था, तो कहां, कहीं ना कहीं हम अपने आप को ठगते रहते हैं। इसलिए बताया ना, हमारे भीतर ही अपने शत्रु बैठे हुए हैं, दूसरा कोई शत्रु नहीं है हमारा। जो हम सोचें कि हमारे पुरुषार्थ में बाधक है, ये हमको घर वाले आगे नहीं चलने देते हैं, वो तो हमारे हिसाब किताब है ही है, लेकिन ज्ञान तो हमारी अंडरस्टैंडिंग है जो हमारे आंतरिक परिवर्तन करती है। उस ज्ञान को समझने के लिए थोड़ा पेशेंस चाहिए, थोड़ा धैर्यता चाहिए, उस पर थोड़ा फोकस देना पड़ेगा। इसलिए टाइम बहुत कीमती है। जो भी हमको गर्भस्थ में हम रहते हैं या कर्म क्षेत्र पर जाते हैं, जब भी मौका मिले कुछ ना कुछ अपने मन बुद्धि को बिजी रखने की एक टाइम टेबल सेट करना है। इसलिए बाबा कहते हैं बार बार मन बुद्धि का टाइम टेबल खुद अपने आप बनाओ, क्योंकि सबका कर्म क्षेत्र अपना अपना है, सबकी व्यवस्थाएं अपनी है, सबका पार्टपन अपना है, सबके हिसाब किताब अपने अपने हैं, सबके संबंध संपर्क अपने अपने हैं। इसलिए सबको एक जैसा टाइम टेबल नहीं चल सकता। हाँ, सवेरे शाम ठीक है, जो हमको टाइम है हम मुरली सुनने आ सकते हैं, लेकिन जो मुख्य पुरुषार्थ का जो टाइम होता है वो हमारा होता है कर्म क्षेत्र पर। परीक्षा तो हमारी वहां होती है, कर्म क्षेत्र से बाहर आ गए, सेंटर में आ गए, वहां तो फिर भी ठीक है, लेकिन कर्म क्षेत्र पर अगर हम ऊपर नीचे हो तो फिर सवेरे और शाम का जो हमारा मेडिटेशन है वो भी हमको इतना फलदायी नहीं होगा वो। इसलिए मुरली के ऊपर विशेष अटेंशन चाहिए। तो बाप समान मीठी सैकरीन बनने के लिए और सब बातें छोड़ देनी है, वो सब बातें जो हमारे पुरुषार्थ में बाधा बन रही है, वो सब बातें जो हमारे संस्कारों में रुकावट डाल रही है, अपने संस्कारों को भी अंदर से रीड करना है, रियलाइज करना है कि कौन कौन से मेरे ऐसे संस्कार हैं, चाहे वो व्यर्थ देखने के हैं। जैसे उस दिन क्लास में रूपेश भाई ने बताया ना कि कोई भी क्लास में आता था, जैसे एंटर करता है तो वहां से लेकर सोफे तक हम उसको रिसीव करने में लगे रहते हैं आंखों से, और बाहर जाते तो उसको छोड़ने भी जाते चाहते, तो हमारे संस्कार पड़ जाते हैं। एक बार संस्कार पड़ गए और फिर नेचुरल हो जाते हैं। ऐसे दृष्टि के है, ऐसे हमारी वृत्ति कैसी है, अंदर ही अंदर किसी को देखने से हमारी वृत्ति हलचल में तो नहीं है। जब भी योग में आते हैं तो अपने चित्त को स्थिर रखने के साथ साथ ही बॉडी भी स्थिर रखनी है। कोई बाजू में आ रहा है, क्या कर रहा है, उसको सोचने की जरूरत नहीं है। जैसे मेडिटेशन में मॉर्निंग भी आते हैं, होता है आना जाना तो लगा रहेगा सभी का, लेकिन हमको इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको बहुत सूक्ष्म थोड़ा टाइम मिला है। जैसे कल सवेरे बाबा ने अमृत वेले जो अव्यक्त आवाज आई थी सुनी हुई, कई ने कई तो कल बाद में आए कि अमृत वेले भगवान वरदान देते हैं, और वरदान के समय भी अगर हमने अब मिस कर दिया या अपने मन बुद्धि को इधर उधर कर दिया तो वरदानों से वंचित रह जाएंगे। और आज क्या बताया था अव्यक्त आवाज में बाबा ने, फिर व्यंजन रिवाइज भी कराया था, स्वराज्य अधिकारी। तो हमें अपने आप का मालिक बनना है, जो बालक सो मालिक भाव ने बताया मुरली में आज में। तो जब तक हम स्वयं के राजा नहीं बनेंगे, स्वयं की कर्मेंद्रियों के ऊपर नियंत्रण नहीं है, स्वयं की कर्मेंद्रियों को तपाया नहीं है, क्योंकि ये बॉडी हमको तप करने के लिए मिली हुई है, ऐसे वैसे काम करने के लिए नहीं है। सामाजिक दायित्व, पारिवारिक दायित्व, आर्थिक गतिविधियां या जो हमारे कर्तव्य हैं, वो तो जिम्मेवारियां निभानी है, उनसे किनारे नहीं करना है, लेकिन उनमें भी साधना का समावेश हो जाए। हमें याद है जब हम सर्विस करते थे तो जब भी हमको थोड़ा सा मौका मिलता था बीच में टाइम 5 मिनट 10 मिनट तो हम अभ्यास करते थे अश्लीली बनने का, और बाबा उसमें बहुत मदद करता है और उसमें टचिंग करा देता अभी क्या होने वाला है। तो उसमें एक और थोड़ा सा मैं आपको सुनाता हूं। तो एक दफा हम बैठे हुए थे, मैं सोच रहा था कि मैं अभी अश्लीली बनने का अभ्यास करता हूं, तो मेरी बुद्धि ऊपरी नहीं जा रही है, थोड़ा सा ऊपर जाए और एकदम पिताजी सामने आ जाए शक्ल उनकी, फिर नीचे आ जाऊं फिर पिताजी सामने आए, हालांकि बहुत दिनों के बाद आ रही थी। तो मैं बोला ऐसा क्यों हो रहा है, तो सामने क्या आ रहा था और संकल्प आ रहे थे, जैसे संदेश नहीं सुनाती हैं कि बतन से संदेश लाती हैं, तो ऐसे संकल्प मन ही मन घूम रहे हो कि अभी तुम्हारे पिताजी आएंगे और उनके हाथ में एक काले रंग का बैग होगा और उसके अंदर एक कागज की पुड़िया होगी और उसके अंदर एक लाल रंग की मिट्टी होगी और वो मिट्टी तेर पर फेंकेंगे, क्योंकि हमारे पिताजी तांत्रिक थे और हम थोड़ा ज्ञान में चले तो वो सोच रहे थे वापस आ जाए इधर से। तो बस इतने संकल्प आ रहे, तो मैं बोला ऐसे संकल्प क्यों आ रहे, तो कहते ना मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। तो ठीक आधे घंटे बाद पिताजी आ गए, तो आदर सत्कार किया उनका, आदर सत्कार किया तो फिर उन्होंने बोला मैं थोड़ा बैग आप रख लो, मैं थोड़ा मार्केट घूम के आता हूँ। मैंने बोला ठीक है, तो हमने रख दिया। फिर हमको बाद में संकल्प आया देखो तो सही, तो जैसे हमने देखा सचमुच उसके अंदर कागज की पुड़िया। अब बाबा ने इतना ही टच कराया था, लेकिन जैसे कागज की पुड़िया देखा तो दूसरी बात भी टच करा ली। तो हमने क्या किया, वो कागज की पुड़िया निकाली और वहां थोड़ा एक बगीचा था थोड़ी दूरी पर ही, वो कागज खोल के मिट्टी फेंक दी वहां और लगभग उसी रंग की मिट्टी थी दूसरी मिट्टी लेकर कागज को उल्टा किया और ओम शांति ओम शांति ओम शांति करके मिट्टी बैग में रख दी। तो देखो बाबा कैसे हेल्प करता है। तो मिट्टी अंदर रख दी, फिर शाम का वक्त हुआ तो वो इसलिए करते थे क्योंकि उसमें मेरे पीछे पड़े थे कि शादी करनी है, तो पहले तो हम हां करते थे लेकिन जब ज्ञान मिला तो मुकर गए एकदम। तो जैसे उन्होंने ये बोला कि चलो घर में, बोला ठीक है, तो हमको तो पता था अभी ये कारनामा करेंगे पीछे से। तो जैसे चौरस्ता आया या तिवाटा आया मुझे पता था करने वाले हैं, तो हम आगे आगे चले, वो पीछे पीछे, उन्होंने मिट्टी निकाल के मेरे को फेंक दी। तो मैं जैसे जानते हुए अनजान बन गया। फिर घर पहुंचे तो फिर मुझे समझाने लगे, अरे अभी तेरी उम्र ही क्या है, तुम शादी नहीं करेगा तुमको बाद में कौन पूछेगा, कोई भाई पूछने वाला नहीं है। तो मैं बोला बात तो ठीक है, मैं बोला विचार तो मेरे बदल रहे हैं, शादी तो मैं करूंगा जरूर। तो वो सोचा मेरी मिट्टी काम कर रही है। तो बाबा के प्रति इतना प्यार बढ़ जाता है ना, बात मत पूछो। तो 6 महीने ना उनको उनकी मिट्टी पर ही चलाता रहा मैं कि आप रिश्ता देखते रहो, लेकिन वो देखते नहीं थे क्योंकि मैं बार बार मना कर देता था। 12 रिश्ते हुए तो 12 बार हमने मना कर दिया। तो ऐसे एक इंसिडेंस और सुनाता हूं आपको, वैसे तो लंबा अनुभव है। तो ऐसे एक बार ऐसे रिश्ते चल ही रहे थे, तो एक रिश्ते में ऐसे था कि मुझे कहा कि हाँ, अमृतसर में सर्विस करता था मैं और पिताजी हिमाचल में रहते थे, लगभग 200 किलोमीटर का डिस्टेंस था। तो हम सर्विस कर रहे थे तो वहां पिताजी आए हमको लेने के लिए कि अभी आप संडे को घर में आना, ऐसे लड़की वाले आएंगे शादी देखने के लिए दिल्ली से, और पिताजी के सामने मना करना बहुत खतरा भयंकर। जिंदगी में कभी मना किया ही नहीं हमने। तो हमने बोला हाँ ठीक है। तो पिताजी चले गए हमको कह के, तो फिर हमने पीछे से ना हिम्मत रख के एक लेटर लिख दिया कि अभी मैं नहीं आऊंगा, जब तक मैं अपने पांव पर स्टैंड नहीं हूंगा। हालांकि मैं हम पांच भाई हैं, पांच भाई से पहले स्टैंड हो गया था, तो लेकिन मुझे अपने आप पर भरोसा नहीं, मैं अभी स्टैंड नहीं हूं। तो पिताजी को जैसे घर में चिट्ठी पहुंची और पिताजी अगले दिन फिर वापस अमृतसर, और जहां मैं सर्विस करता था आते ही धाड़ 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 सबके सामने मेरे सारे विक्रम भस्म कर दिए उन्होंने और मुझे कोई एक भी संकल्प नहीं चला उनके प्रति, क्यों मार रहे हैं कुछ नहीं। अब नया नया तो नशा भी बहुत होता है, तो बैज लगाया बड़ा सा एकदम, और यहां से पकड़ी सारी कमीज वीज फाड़ दी, कपड़े फाड़ दिए, बैज कहां गिरा पता ही नहीं, और अपन का तो नशा चढ़ा हुआ। तो फिर सारा उधर बाजार इकट्ठा हो गया कि लड़की ने क्या कर दिया आखिर, इसने तो पहले तो कुछ किया नहीं, इतने साल इसको सर्विस करते इधर हो गए तो इसने तो कुछ किया नहीं इधर। तो खैर धीरे धीरे फिर ओनर को पता लगा कंपनी वाले को कि ये शादी के लिए मना कर रहा है। फिर सब तो मुझे समझाने लग गए कि ये ब्रह्म कुमारी में जाता, अब उस समय तो ब्रह्म कुमारी के खिलाफ ही होते हैं बहुत सारे लोग, एक हाँ कर दे। तो फिर सब समझाने लगे, तुम्हें कोई पूछेगा नहीं बाद में, तुम तो अभी तेरा बचपन है, तुमको तेरी अकल काम मारी गई है, तो अभी शादी कर ले, तुमको जो चाहिए मैं बिजनेस करवा दूंगा। पिताजी मना खूब प्रलोभन दे, अब वहां मुसीबत होगी, सब बाजार इकट्ठा हो गया। फिर पिताजी कहते तुमको अभी मेरे साथ चलना है घर, अब भी चलना अभी के अभी। मैं तो फंस गया फिर, लेकिन तो निश्चय तो पूरा था कि जीत तो हमारी पक्की है कुछ भी हो जाए। तो फिर हमने वहां से अपनी टीचर बहन को फोन किया कि बहन जी ऐसे ऐसे हमारे पिताजी लेने आए, मैं जाऊं या नहीं जाऊं। तो बहन जी कहते बिल्कुल नहीं जाना तुम यहां एक से मुकाबला नहीं कर पा रहे, घर में सबसे कैसे मुकाबला करेगा। तो मतलब बात तो ठीक है, फिर मैं पिताजी को मना करूं तो पिताजी कहते अगर तुम नहीं गया ना तो मैं यहां सबके सामने प्राण त्याग दूंगा अभी। तो मैं बोले मुसीबत होगी यही। तो फिर मैंने फोन किया, बहन जी कहते देख ले, मैं बहन जी जाऊंगा और 100% जीत के आऊंगा। तो बोला देख ले अपनी मर्जी से जा। मैं बोला ठीक है। पिताजी रातों रात ले गया अपने को, 14 अप्रैल 1996 का दिन था, तो बैसाखी वाला दिन। तो हमारे पिताजी कभी ये नहीं कि इतनी दूर से आए हैं थोड़ा रेस्ट वेस्ट कर लो, कुछ नहीं, नथिंग, कभी नहीं। दिनों रातों हमेशा हमको काम में, खेतों में, मजदूरी या कुछ भी है, खूब पक्का किया था कि कोई भी जिंदगी में आगे ठोकर ना खाए, किसी प्रकार से मना आर्थिक स्थिति से कोई तंग ना रहे, अपने पैरों पर खड़े हो सके सभी, तो इतना पक्का किया हुआ था। तो जाते हम रातों रात हमको ले गए, सवेरे घर पहुंचे थके हारे, खेतों में लग गए हम दिन भर, खेत गेहूं की वहां गेहूं का काम किया। फिर रात को सभी लोग इकट्ठे हो गए, तो बड़ा भाई डॉक्टर मेडिकल स्टोर का, फिर दूसरे भाई भाभियां माता जी सब इकट्ठे हो गए जी, सब बैठ गए। बोले क्या करना, तुमको शादी करनी कि नहीं करनी। बोले शादी तो मैं करूंगा ना, मैं ब्रह्मा कुमारी के चक्कर में जाने वाला नहीं हूं, मरता क्या ना करता अभी नहीं तो मेरे तो बर्था बना देते रात को ही वो कम से कम रात तो निकले, सवेरे देखेंगे तो खैर जी रात को तो नींद बिल्कुल ले, एक सेकंड भी नींद कहाँ आए। उस समय तो ऐसे था कि भगवान हमारे से योग लगा रहा है, हम भगवान से, क्योंकि योग का तो पता ही नहीं होता शुरू शुरू में, इसलिए बाबा कहते ना बचपन के दिन भुलाना देना, आज जैसे कल रुलाना देना। तो पूरा दिन जैसे बाबा ने हमारी बुद्धि को पकड़ के रखा, बस तारे गिनती करते रहे और बाबा ही दिखाई दे रात भर। सुबह हुई सब लोग खुश, मैं बोला खुशी तो मैं आप सबकी खराब कर दूंगा आज तो खैर जी सब लोग तैयार हो गए। अब वहां से 12-15 किलोमीटर का लड़की वालों का घर था, तो सब लोग बस में बैठ गए। तो हमने देखो पिताजी को कहा, मैंने बोला आप तो शादी का पक्का ही कर देना, लेकिन मेरी एक शर्त रहेगी। बोला कोई शर्त नहीं। मैं बोला नहीं, मैंने जिंदगी में आपकी सारी बातें मानी है, कभी मना नहीं किया, मैं शादी के लिए मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन शर्त ये रहेगी कि मैं 4 साल बाद शादी करूंगा, आप भले बहा स्टैंप पेपर लिख लो। अब लड़की वाला कौन 4 साल बाद ठहरेगा तो पिताजी कहते तुम बोलना नहीं बिल्कुल, नहीं तो मैं तेरे प्राण सबके सामने निकाल दूंगा। तो खैर जी करते कराते तो लड़की के घर पहुंच गए, एकदम पहाड़ी रास्ते से होते हुए, माता जी साथ में, बड़े भाभी और बड़ा भाई। तो पहुंचे, अब वो हॉल में मुझे बिठा दिया उधर, लड़की वाले भी बैठ गए उधर, तो मुझे बोला वो लड़की से बात कर लूं। ऐसे तो पहले 11 लड़कियों से बात कर चुके थे हम तो ये कोई नई बात नहीं थी तो हम गए बात करने, तो हमने बोला देखो, अब हमारा तो इंटरेस्ट नहीं था, तो हमने बोला देखो हमारी तरफ से तो कोई माना नहीं है, देखो जिंदगी में साथ निभाना तो जैसा मैं कहूंगा वैसे करेंगे ना। बोला हाँ, मैं बोला पति परमेश्वर होता ना, बोला हाँ, अब बना तो है ही नहीं वैसे ही तो बोला हाँ, तो मैं बोला जैसे बोलूंगा वैसे करूँ, बोला हाँ, तो मैंने बोला आप बोलना कि मैं 4 साल बाद शादी करूंगी, बोला ये तो ना मैं बोलूंगी तो मैं बोला जिंदगी कैसे निभाएगी फिर, तुम तो अभी मुकर रही है। तो खैर जी वो तो मुझे पता क्या बोलेगी बेचारी। हम वापस आए बैठक में, बोला क्या हुआ, मैं बोला ठीक है जी लेना देना कर लो जो भी करना, लेकिन मेरी एक शर्त रहेगी कि मैं 4 साल बाद शादी करूंगा। तो हमारे पिताजी तो वहीं आग बबूला हो गए एकदम, और समझाते रहे सभी। तो फिर मुझे पकड़ के पिताजी थोड़ा मकान के पीछे ले गए अभी समझ गए सारे किसी तो वहां पीछे ले गए, तो थोड़ा सा उन्होंने पहले तो समझाया अच्छी तरह से, और वहां मैं उनको ज्ञान समझा रहा हूँ, देखो जिंदगी में आपकी सारी बातें मानी है, मेरा दिमाग भी चेक कर लो ठीक ठाक है अभी भी, और सचमुच भगवान आ चुका हुआ है, नहीं तो मुझे आपको तंग करने की जरूरत पड़ी है, भगवान आ चुका आप भी ज्ञान समझ लो। तो पिताजी तो पहले समझाते रहे, तो धड़ाधड़ वही सबके सामने चालू कर दिया, और फिर बाद में पिताजी की आंखों में आंसू आ गए, बोला हाथ जोड़ के मान जा प्लीज, अपनी पगड़ी उतार के पांव में रख दी, बोला अगर तुमको जो चाहिए मैं करके दूंगा। जिंदगी में पहली बार पिताजी को रोते हुए देखा, लेकिन हमारे मन में कोई असर नहीं, हमें तो ऐसी फीलिंग आ रही थी कि जैसे पूरा ब्राह्मण परिवार और बाबा की छत्रछाया ऊपर है, और मैं पूरी तरह सुरक्षित है, और बाबा के वरदान जैसे कानों में गूंज रहे कि बच्चे अचल अडोल भव निर्विघ्न भव विघ्न विनाशक भव, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, जैसे मैं बॉडी में था ही नहीं उस समय। फिर थोड़ी देर बाद पिताजी हार थक के किनारे हुए, थोड़ा बड़ा भाई आया, फिर वो भी हाथ हजमाने आ गया, बोला ठीक है बहती गंगा में आप भी हाथ धो लो, थोड़ा उन्होंने भी 2-4 लगा दिए, क्योंकि जिसका प्यार जिससे ज्यादा होता ना मार भी उसी से बढ़ती है। तो फिर उन्होंने भी मारा, मम्मी आए तो मम्मी ने मारा नहीं लेकर रोए, बड़े भाभी हुए तो सब रो रहे, वो अपने कोई असर नहीं, और सामने वो लड़की वाले देख रहे हो क्या रहा है, ये तो करने क्या आए थे, हो क्या रहा है इधर। तो सारे भगवान के मां बाप्यों का असर था, वो जादू था, मुरली का जादू था, क्योंकि मुरली थोड़ी भी समझ में हमको आ जाती है ना, तो जिंदगी की जितनी भी बड़ी तूफानी समस्या आ जाए वो सब पार कर सकते हैं, हमें हर समस्या का समाधान मुरली में है, हर समस्या का। आज तक हमने किसी से कोई प्रश्न पूछा ही नहीं है कि ये समस्या तो क्या करें, बाबा ने हर समस्या का समाधान दिया हुआ है। तो वहां से हम निकले, फिर थोड़ा आगे गए तो लड़की वालों को तो हमने समझा दिया, भाई ऐसे ऐसे अगर अब हाँ कर देते तो कल को आपकी बहन को प्रॉब्लम आ जाती, तो उसका जिम्मेवार कौन। तो लड़की का भाई कहता चलो ठीक है जो हुआ ना अच्छा हुआ, मैं बोला मेरे लिए तो अच्छा ही हुआ वैसे भी। फिर आगे रास्ते में पिताजी ने फिर पकड़ लिया मुझे, बोला आज तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, आज तो मैं तेरे प्राण ही निकाल दूंगा। तो खैर फिर तो हमने रास्ता थोड़ा चेंज कर दिया, फिर रात को एक जगह सेंटर में रहे, अगली जगह फिर वापस हम प्रिंसिपल में आए। तो ऐसे बहुत प्रकार के इंसिडेंट होते हैं, लेकिन मुख्य सार में यही कहेंगे कि जितना हम पढ़ाई से जुड़े रहते हैं, वो पढ़ाई हमारी ऑक्सीजन है, पढ़ाई हमारी सुरक्षा कवच है, ये दर्पण है, हमें दिखाता रहता है कि कौन कौन सी समस्याएं आने वाली हैं, उन समस्याओं का समाधान कैसे करना है, और निरंतर हमारे रास्ते को क्लियर कर जाती है जितने मर्जी विघ्न आए। लेकिन अगर पढ़ाई पर हमने पूरा फोकस किया है, आज भी हम कईयों का सुनते हैं, पहले भी सुनते आए थे कि घरों में जितने मर्जी फंक्शन होते हैं लेकिन मुरली कभी मिस नहीं करते वो। और आज के समय तो सोशल मीडिया के इतने संसाधन हैं कि मुरली तो हर एक के पास पहुंची जाती है। तो मुरली एक ऐसी चीज है कि हर समस्या का समाधान है वो, मुरली तो एक हमारा सुरक्षा कवच है, हमारे लिए ढाल है वो, मुरली एक ऐसी लाठी है बाबा ने कहा जो तुमको स्वर्ग में पहुंचा देगी सीधी। मुरली तो हमारे लिए चोप चीनी की खुराक की तरह भोजन है, अगर हम भोजन ही नहीं खाएंगे तो क्या होगा। तो ये मुरली के ऊपर पूरा अटेंशन देने की जरूरत है। तो अनेक प्रकार की बातें हमने देखी कैसे मुरली को याद करना है, सबसे पहले कौन सी बताई, मुरली में क्या क्या ढूंढना है, पात्र ढूंढने हैं, कितने प्रकार के पात्र होंगे, तो आज की जैसे आप सब ने बताया कितने पात्र हैं, तो कैसे मुरली याद आ जाएगी अपने आप ही। सीता के बारे में बाबा ने क्या बोला, सेना के बारे में क्या बोला, पायलट के बारे में क्या बोला है, लक्ष्मी नारायण के बारे में क्या बोला, रावण के बारे में क्या बोला, माया के बारे में क्या बोला, हनुमान के बारे में क्या बोला है। तो स्वतः सारी पात्र अगर पात्र के हिसाब से मुरली को याद रखे तो भी आसान हो जाता है। है ना। और दूसरा मेथड कौन सा बताया? इंग्लिश वर्ल्ड। मुरली में कौन कौन से इंग्लिश वर्ड है, अगर उनको हम कलेक्शन कर लें तो भी मुरली याद सहज आ जाती है। और तीसरी बात डू एंड डोंट्स, हाँ क्या करना है क्या नहीं करना, उसकी एक अलग लिस्ट बना लो। चौथी बात कंट्रास्ट, है जी कंपैरिजन, कंट्रास्ट कंपैरिजन तुलना, ये हो सकता है। और पांचवी बात टॉपिक निकालो उसमें से, मनन चिंतन करो। और पांच अगली बात है जी मुरली एक शुद्ध पेट्रोल की तरह है, हाँ उसको पेट्रोल के 2-4 लीटर निकाल देना मुरली से पेट्रोल, ताकि मुरली में भर लेना उसमें, रिपीट होती रहेगी। हाँ मुरली को रिकॉल करना बार बार, ये भी एक तरीका है। हाँ कुछ वर्ड्स रिपीट होते हैं। फिर मुरली का एक तरीका है मुरली को याद करने का, सर्व संबंधों से, बाबा के मुरली के सर्व संबंध कौन कौन से आज के मुरली में संबंधों से आया, उससे याद कर सकते हैं। सेवा की क्या कौन कौन सी युक्तियां हैं, योग के लिए बाबा ने कौन सी विधि, जैसे आज योग के लिए बहुत सुंदर विजन था, कौन सा, तुम हो लाइट हाउस, कितना सुंदर है लाइट हाउस में कितनी समर्थ ये शक्ति भरी हुई है। तो हर चीज में बहुत राज समाये हुए हैं। तो ये मुरली हमको पंख लगा देती है और व्यर्थ आने का मार्जिन रहता नहीं है, और धीरे धीरे जबरदस्ती करेंगे तो धीरे धीरे फिर प्यार बढ़ता जाएगा हमारा मुरली से। और जहां प्यार होता है वहां मेहनत नहीं लगती है, जहां स्नेह होता है वहां कोई मुश्किल नहीं है, बहुत असंभव काम भी संभव हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारी युक्तियां हैं जिनके माध्यम से हम मुरली को याद कर सकते हैं। ओम शांति।
Thank you.